विस्तार। भारतीय नाट्य परंपरा के उदय और उत्कर्ष के इस संक्षिप्त सर्वेक्षण के बाद अब अगले चरण के रंगकर्म के स्वरूप को पहचानने की कोशिश की जा सकती है, पर इसके पहले एक बात का उल्लेख करना उपयोगी होगा। भारतीय रंगकर्म का यह चरण कुछ सीमित पर महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बावजूद लगभग 1000 वर्ष की अवधि में फैला हुआ है और इसके अनेक सूत्र और रूप आधुनिक युग तक चले आए हैं, मगर इस दौर की पूरी परंपरा को आधुनिक युग में पश्चिमी इतिहासकारों, समाजशास्त्रियों अथवा अन्य विचारकों के अनुकरण में या उनके प्रभाव के कारण अक्सर ही लोक रंगमंच कहा जाता रहा है, जो कई कारणों से भ्रामक है। दरअसल इस लंबे दौर के रंगकार में अलग अलग देश, प्रदेशों या भाषाओं में जो अनेक नाट्य रूप विकसित हुए हैं, उनमें हमारी शास्त्र सम्मत या प्राचीन कलाओं के बेशुमार तत्व मौजूद हैं। इसलिए उन्हें केवल इस कारण लोक रंगमंच कहना असंगत है कि वे हमारे ग्रामीण समाजों में सुरक्षित रहे और पनपे हैं। उनमें से बहुसंख्यक किसी आदिवासी या कृषि निर्भर ग्रामीण समाज के सामान्य गीत नाट्यों या नाट्यों का चित्रांकनों जैसे स्वतः स्फूर्त या सरल नहीं है। अनेक की संरचना और शिल्प पद्धतियां जटिल हैं और उनमें निपुण होने के लिए पुराण, काव्य, संगीत, नृत्य आदि के ज्ञान के अलावा दीर्घकालीन प्रशिक्षण और अभ्यास भी अनिवार्य होता है। कुड़ियाट्टम या कुचिपुड़ी का अभिनय, यक्षगान का नृत्य या स्वांग अथवा नौटंकी का गायन वादन अपने आप नहीं आ सकता। उनमें भी दक्षता हासिल करने के लिए देश की अन्य शास्त्रीय कलाओं के बराबर न सही, पर बहुत कुछ उनकी ही तरह किसी गुरु से सीखना जरूरी होता है। इसलिए आजकल पारंपरिक नाट्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने वाले अनेक विद्वान और रचनाकार इन विभिन्न नाट्य प्रकारों के इस विशेष चरित्र को ध्यान में रखते हुए इन्हें फोक थिएटर या लोक रंगमंच की बजाय पारंपरिक रंगमंच कहना अधिक उचित मानते हैं। यह नाम का किसी हद तक अधिक व्यापक और इसलिए कुछ अपर्याप्त होने के बावजूद लोक रंगमंच की तुलना में इन नाट्यों की विशेषताओं को अधिक रेखांकित करता है। साथ ही यह नाम उन्हें प्राचीन संस्कृत रंगकर्म से भी अलग करता है और आधुनिक रंगकर्म से भी। यहाँ इस बात को भी दोहराना शायद आवश्यक है कि यद्यपि अनेक प्रदेशों और भाषाओं के सभी नाट्यों को उनकी कुछ सामान्य विशेषताओं के कारण पारंपरिक रंगमंच के अंतर्गत रखा जा रहा है, पर वास्तव में उनमें बहुत विविधता और अनेक रूपता है। संस्कृत रंगमंच जैसी एक रूपता नहीं, यही कारण है कि उनमें संस्कृत नाट्य परंपरा के अनेक तत्व मौजूद तो हैं, पर वे अनिवार्य रूप से प्रत्येक प्रदेश की अपनी विशेष भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से निर्धारित और उनके अनुसार ही परिवर्तित, रूपांतरित हैं। वास्तव में जिस समय संस्कृत रंगमंच उपलब्धि के शिखर पर रहा होगा, उन दिनों भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी अपनी स्थानीय नाट्य पद्धतियाँ अवश्य मौजूद रही होंगी, जो जनसाधारण के जीवन के समीप होंगी और उनका मनोरंजन करती होंगी। यह केवल कल्पना नहीं है। नाट्यशास्त्र के दक्षिणात्य, आवंती, पांचाल, मध्यमा और ऑर्डर मागधी आदि प्रवृत्तियों और अन्य ग्रंथों में उपरूपकों की जो चर्चा है, वह बहुत कुछ इसी स्थिति की ओर स्पष्ट और निश्चित संकेत करती है। यह अनुमान किया जा सकता है कि संस्कृत रंगमंच के निष्क्रिय होने के बाद रुचि संरक्षण और दर्शक समुदाय के कम होने पर विभिन्न केंद्रों के नाट्य गुरु, अभिनेता आदि धीरे धीरे उन केंद्रों को छोड़कर अपने अपने या दूसरे प्रदेशों में जाकर वहां के लोकप्रिय रंगकार से जुड़ गए। इस प्रकार संस्कृत रंगकर्म की अधिक समृद्ध और विकसित पद्धतियों का लोक जीवन की सहज किंतु जीवंत शैलियों के साथ मेल हुआ होगा। वास्तव में यह मेल या परस्पर आदान प्रदान की प्रक्रिया एक ही नहीं, अनेक स्तरों पर घटित हुई। गार्गी और देशी के बीच बहुप्रदेशीय और स्थानीय, कालजयी या प्राचीन और तात्कालिक, धार्मिक और लौकिक, लिखित और मौखिक के बीच, इसमें भाषाई प्रदर्शन मूलक रूपंकरी सभी प्रकार के अभिव्यक्त माध्यमों का परस्पर लेन देन हुआ और सभी प्रभावित हुए। वंचीय परंपराओं में संस्कृत नाटकों और उनके प्रदर्शन पद्धतियों का संदर्भ तो था ही, साथ साथ चारणों के गाथा गायन, कथावाचन, कीर्तन एवं नृत्य संगीत के अनुष्ठान मूलक तथा अन्य विभिन्न शैलियों आदि के बीच भी आदान प्रदान हुआ। इस प्रकार अलग अलग प्रदेश की अपनी विशेष सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के अनुरूप उनके अपने अलग अलग आस्वाद और संरचना के नाट्य विकसित हुए। यह प्रक्रिया 10वीं-11वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रूपों में लगातार चलती ही रही है। इनमें 8वीं 10वीं शताब्दी में केरल की कुटियाट्टम जैसे प्राचीन और संस्कृत मलयालम मिश्रित नाट्य प्रकारों से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी में कश्मीर के भाड़ पत्थर जैसे सरल सहज नाट्य रूप तक शामिल हैं। इस प्रकार भारतीय रंगमंच का जो नया चरण शुरू हुआ वह कई प्रकार से संसार की रंग संस्कृतियों में बेजोड़ तो है ही अपने आप में भी बहुत आकर्षक और अनूठा है। इसे अक्सर संस्कृत नाटक और रंग प्रयोग की तुलना में ह्रास या गिरावट का दौर कहा जाता है, पर यह मान्यता बहुत एकांगी और संकीर्ण पैमाने पर आधारित है। वास्तव में इस दौर का रंगकर्म कई प्रकार से अत्यंत कल्पनाशील जीवंत होने के अलावा जनजीवन से गहरा जुड़ा है, जो अपनी बड़ी शक्ति है। पर इस संबंध में कुछ अधिक टिप्पणी करने से पहले इस रंगकार की विशेषताओं को ठीक से पहचान लेना जरूरी है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चरण के रंगकार में लिखित नाटक की स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ, बल्कि शायद यह कहना अधिक उपयुक्त हो कि प्रादेशिक भाषाओं के नाट्यों में सृजनात्मक रचना के रूप में नाटक लगभग अनुपस्थित हैं। संस्कृत रंगकर्म में नाटककार और उसकी रचना का केंद्रीय महत्व है, बल्कि भास, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भवभूति, हर्ष, बोधायन आदि के बिना संस्कृत रंगमंच की न तो कल्पना की जा सकती है, न उसका वह अनुपम चरित्र वैशिष्ट रह सकता है। मगर परवर्ती युग में प्रादेशिक भाषाओं में एक भी नाटककार ऐसा नहीं हुआ जिसकी रचनाओं को किसी भाषा के अनुसार पूरी तरह नाटक कहा जा सके। जिनकी रचनात्मक उपलब्धि संस्कृत नाटकों की भांति साहित्यिक यानी सृजनात्मक स्तर पर उल्लेखनीय हो, या जिन्हें रंग सृष्टि का महत्वपूर्ण अवयव होने के साथ साथ स्वतंत्र रूप से एक श्रेष्ठ सृजनात्मक कृति की तरह पढ़कर आनंद या तृप्ति का अनुभव किया जा सके। प्रादेशिक भाषाओं पर रंगकर्म नाटकों पर नहीं, ऐसे नाट्य लेखों पर आधारित रंगकर्म है जो विभिन्न प्रबंधों, काव्यों, मुक्तकों या दूसरे स्रोतों से प्राप्त सामग्री से प्रयोग प्रदर्शन के लिए तैयार किए जाते थे। इस दौर में जो नाटक लिखे भी गए वे भी कमोवेश काव्य संगीत नृत्य प्रधान नाट्यलेख ही हैं, जिनकी सार्थकता उनके प्रयोग या प्रदर्शन में चाहे कितनी हो पर स्वतंत्र सृजनात्मक कृतियों के रूप में नहीं के बराबर है। इस निश्चय के लिए कुछ अधिक गहरे और व्यापक अनुसंधान की आवश्यकता है कि रंगमंच के इस चरण में समर्थ नाटक न होने के कारण संगीत और नृत्य को इतनी प्रमुखता मिली, अथवा संगीत नृत्य के प्रमुख हो जाने के कारण ही लगभग हजार वर्ष के लंबे दौर में एक भी ऐसा नाटक नहीं लिखा जा सका जिसे संस्कृत नाटकों के समकक्ष रखा जा सके, अथवा इसका कोई और ही कारण है। यह दलील बहुत विश्वसनीय नहीं है कि इस बीच कोई ऐसा प्रतिभाशाली कवि या रचनाकार ही नहीं हुआ, क्योंकि यह दौर तो लगभग सभी भारतीय भाषाओं के महानतम कवियों का है, जिनकी रचनाओं का उपयोग रंगकार में भी होता रहा है। इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि ये सब कवि रंगकर्म और उसकी आवश्यकताओं से परिचित तो थे, पर फिर भी उनमें से किसी ने नाटक नहीं लिखा जो इसका कोई गहरा ही कारण होना चाहिए। इस तरह यह तर्क भी आंशिक रूप से ही सही है कि इस दौर में आधुनिक भारतीय भाषाएं अपने प्रासंगिक प्रारंभिक स्थिति में थी और इतनी समर्थ नहीं हो पाई थी कि नाटक जैसी जटिल और संश्लिष्ट विधा के लिए उनका उपयोग सहज हो। मगर एक तो जैसा पहले कहा गया है, इसी दौर में उन भाषाओं में उत्कृष्ट कोटि की काव्य रचना हुई जो अपनी सूक्ष्मता, शक्ति और पूर्णता में अद्वितीय है। दूसरे तमिल, मलयालम, कन्नड़ जैसी कुछ दक्षिण भारतीय भाषाएं तो बहुत पुरानी हैं और उनमें संस्कृत साहित्य के समानांतर पिछले 1500-2000 वर्षों से साहित्य रचना होती रही है, पर उनमें भी इस दौर में कोई उल्लेखनीय नाट्य लेखन नहीं हुआ। कुड़ियाट्टम के लिए लिखे गए आचार्य चूड़ामणि, सुभद्राधनंजय या तपसी संवरण जैसे नाटक पुराने संस्कृत नाटकों की छायाएं ही हैं। स्वतंत्र उत्कृष्ट रचना के रूप में उनका बहुत ऊंचा स्थान नहीं है। और तीसरे, रचनात्मक प्रतिभा हमेशा भाषा के पहले से विकसित और समर्थ हो जाने की राह नहीं देखती, बल्कि प्रायः स्वयं भाषा के अधिक सक्षम होने में योग देती है। शेक्सपियर तो इसका उदाहरण है ही। हिंदी में भारतीय दर्शनचंद का नाम भी लिया जा सकता है, जिन्होंने अपने नाटकों में एक नई नाट्य भाषा पढ़ने के साथ साथ आधुनिक खड़ी बोली को अधिक सार्थकता और शक्ति दी। वास्तव में इस दौर का रंगकर्म एकाधिक कारण से नृत्य और संगीत की अत्यधिक प्रधानता से शुरू हुआ, जो बाद में भी बनी ही नहीं रही और बढ़ भी गई। फलस्वरूप लिखित शब्द को पर्याप्त और इतना महत्व तो नहीं मिल सका कि रंगकार के लिए नाट्य लेखन अनिवार्य समझा जाए। यह स्थिति 800-900 वर्ष तक लगातार मौजूद रही। 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन ने अनेक प्रदेशों और भाषाओं में महान कवि तो पैदा किए, पर उनमें भी सृजनात्मक उत्कृष्टता के नाटकों की रचना के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि भक्ति आंदोलन के सूत्रधार और उन्नायक संतों ने ही नहीं, स्वयं कवियों ने रंगकर्म के नृत्य संगीत परक रूप को ही अपने उद्देश्य के अधिक अनुकूल पाया। रंगकार उनके भक्ति भावना के प्रसार और पुष्टि का एक अत्यंत सफल माध्यम बन गया। इस प्रक्रिया में नए नए प्रकार विकसित हुए और उनमें उल्लेखनीय सफलताएं भी हासिल हुई। रंगकार का यही रूप सार्थक और लोकप्रिय भी सिद्ध हुआ और अनेक उतार चढ़ाव के बावजूद 19वीं शताब्दी के मध्य तक ऐसे ही प्रचलित तथा प्रतिष्ठित रहा आया। जैसे पहले कहा गया, इस रंगकार में प्रदेश और भाषा विशेष में उपलब्ध काव्यों, प्रबंधों या गीतों के आधार पर लचीला नाट्य लेख तैयार करके उसे नृत्य संगीत के अभिनय के माध्यम से दिखाने की प्रवृत्ति ही प्रबल रही। देश के सभी प्रदेश भाषाओं में सूतों, चारणों, भाटों या घुमंतू गायकों द्वारा कथा गायन की परंपरा प्राचीन काल से बड़ी व्यापक और लोकप्रिय रही है। इन प्रचलित आख्यानों तथा कथाओं के, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों के तथा भागवत और हरिवंश जैसे पुराणों के प्रसंगों का गायन प्रमुख था। क्षेत्रीय महापुरुषों और राजाओं की सफलता या वीरता की गाथाओं का गायन भी होता था। कई भाषाओं में महाकाव्य या प्रबंध काव्य भी लिखे जा चुके थे। इनके अतिरिक्त एक अन्य संस्कृत काव्य जिसने नृत्य और संगीत कलाओं के साथ साथ पारंपरिक नाटकों की कथावस्तु को भी व्यापक रूप में प्रभावित किया है, वह है 12वीं शताब्दी में कवि जयदेव रचित गीत गोविंद। 16वीं-17वीं शताब्दी तक इस पारंपरिक प्रदर्शनों के नाटक लेखों का आधार ऐसे ही सब सामग्री ही है। इस चरण का यह अलंकार संस्कृत रंगकर्म से एक अन्य बात में भी अलग है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और लगभग सभी प्रदेशों के नाट्यों में समान रूप से मौजूद है। संस्कृत नाटक कुछ एक अनुष्ठान मूलक तत्वों के बावजूद अपनी दृष्टि, भाव वस्तु और उसके प्रस्तुतिकरण में लौकिक है। उनके कथानक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धार्मिक भावना, उद्देश्यों या प्रसंगों पर आधारित नहीं है। उनमें अधिकतर सामान्य दैनंदिनी जीवन का ही चित्रण है, भले ही वह जीवन पौराणिक पात्रों, घटनाओं या प्रसंगों से संबंधित हो। यहाँ तक कि रामायण या महाभारत से प्रेरित संस्कृत नाटकों में भी राम और कृष्ण ईश्वर के अवतार से अधिक असाधारण क्षमता संपन्न महापुरुषों के रूप में ही प्रस्तुत है। एकाधिक नाटक में तो धार्मिक संप्रदाय या धर्म पुरुषों की जो छवि उभरती है वह बहुत प्रशंसा सूचक या सराहनीय नहीं, व्यंगपूर्ण है। इसके विपरीत परवर्ती मध्यकालीन रंगकार या तो लगभग प्रारंभ से ही धार्मिक रहा या बाद में वह किसी न किसी धार्मिक अनुष्ठान से, समारोह से, संस्थान से जुड़ गया। अनेक नाट्यों का उदय मंदिरों में ही हुआ और वहीं वे बड़े पनपे और मंदिरों के नाट्य मंडलों में नियमित रूप से होने वाले अथवा विशिष्ट अवसरों के कार्यकलाप के अंग बन गए। निस्संदेह 10वीं से 13वीं-14वीं शताब्दी के रंगमूलक कार्यकलाप की तस्वीर बहुत साफ या निश्चित नहीं है, पर जयदेव के काव्य गीत गोविंद से प्रेरित विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों में बढ़ती हुई क्रमशः धर्मिता और भक्ति भावना दिखाई पड़ती है। 15वीं से 17वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की प्रेरणा से जिन अनेक नाटक प्रकारों का उदय हुआ या पहले से चले आते नाट्यों का नया संस्कार हुआ, वे एक धार्मिक आंदोलन के अंग तो थे ही विशिष्ट धार्मिक या धर्मपंथी उद्देश्यों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए ही आयोजित हुए थे। असम का अंकिया नाट, तमिलनाडु का भागवत मेल, केरल का कृष्णाट्टम, आंध्र का कुचिपुड़ी, महाराष्ट्र का दशावतार, उत्तर प्रदेश के रासलीला और रामलीला स्पष्टतः वैष्णव धार्मिक अनुष्ठान जैसे हैं, जिनमें बहुत बार अभिनेता साधारण मानव नरक स्वरूप या अवतार माने जाते हैं और उसी रूप में प्रदर्शन के दौरान ही उनकी पूजा होती है। यह बात इनके नाट्य लेखों से भी स्पष्ट है। अंकिया नाट या भावना में रुक्मिणी हरण, पारिजात हरण, कालीय दमन, श्री राम विजय नाटक, जात्रा में जगन्नाथ वल्लभ, रुक्मिणी हरण, कुचिपुड़ी में भामा कलापम, भागवत मेल में राधा माधव, गजेंद्र मोक्ष, जानकी परिणय, परशुराम विजय आदि प्रसंग कमोबेश धार्मिकता के ही सूचक है। यह हिंदी भाषी क्षेत्र के रामलीला और रासलीला जैसे नाट्य से पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है, जो तुलसी और सूरदास जैसे महान कवियों के गहरी धार्मिकता और भक्ति में डूबी हुई रचनाओं पर आधारित है। 17वीं शताब्दी के अंत तक वैष्णव भक्ति आंदोलन में कुछ उतार आने पर कई नाट्यों, विशेषकर जात्रा में शाक्त या शैव प्रभाव भी चंडी मंगल, महिषासुर मर्दनी, हर पार्वती जैसे कथानकों में दिखाई पड़ता है। किंतु केवल यही नहीं, भक्ति आंदोलन के समेत इतनी बड़ी और गहरी तथा भारतीय सामाजिक जीवन की बुनियादी जरूरतों से इतनी जुड़ी हुई थी कि उसके बाद अधिकांश नाटक प्रकार या तो राम और कृष्ण के अवतारी रूपों को सीधे ही दिखाते रहे या किसी न किसी प्रकार से धार्मिक भावनाओं या भक्ति प्रेरक मान्यताओं के संवाहक बन गए। रंगकार की भाववस्तु के लौकिक जीवन से धार्मिक जीवन की ओर बढ़ जाने के कई प्रकार के कारण हैं। फिर भी एक बात स्पष्ट है, संस्कृत नाटक और प्रयोग के उत्कर्ष के दौर में यानी 10वीं शताब्दी से पहले तक धर्म या धार्मिक अनुष्ठान या आचरण व्यक्ति और समाज के जीवन का महत्वपूर्ण अंग तो था, पर वह न तो जीवन का एकमात्र या सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप था, न उसके ऊपर व्यक्ति या समाज के अस्तित्व की सार्थक पहचान या अस्मिता निर्भर करती थी। किंतु मध्ययुग में धार्मिक स्तर पर आत्मप्रतिष्ठा ने अस्मिता के संघर्ष का रूप ले लिया। देश पर पूर्ववर्ती आक्रमणकारियों से भिन्न मुस्लिम विजेताओं और शासकों के साथ संघर्ष और विरोध का मूलाधार धर्म ही बन गया था और देशवासियों का उनके साथ सह अस्तित्व भी धार्मिक स्तर पर एक स्वतंत्र स्पष्ट पहचान बनाकर ही हो सकता था। इसलिए उस युग के विभिन्न धार्मिक आंदोलनों के माध्यम से ही नई विचारधाराओं, सामाजिक आदर्शों एवं मान्यताओं के बीच आदान प्रदान और परस्पर सामंजस्य, समावेश और समन्वय हुआ। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक था कि धर्म भारतीय जीवन को दूरी बन गया और इस बात की अभिव्यक्ति नाट्य प्रकारों में अनिवार्य हो गई। धार्मिक अस्मिता की यह अनिवार्यता, उत्कटता और तीव्रता जैसे जैसे शिथिल हुई और सामाजिक और वैयक्तिक जीवन सहज होता गया, वैसे ही वैसे अनेक नाट्यों का चरित्र भी शुद्ध या कट्टर धार्मिक या सांप्रदायिक रहने की बजाय व्यापक रूप में सांस्कृतिक होता गया। बंगाल की यात्रा, तमिलनाडु का तिरुकुतु, आंध्र का वीथि नाटक या किसी हद तक कर्नाटक का यक्षगान इसके उदाहरण हैं। इनमें या तो धार्मिक कथानकों के साथ ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक कथावस्त कथानक की प्रस्तुत होने लगे या पौराणिक प्रसंगों को ही इस तरह से दिखाया जाने लगा कि उनका धार्मिक पक्ष प्रमुख न रहा। साथ ही ऐसे अनेक नाटक प्रकार भी उभरे जो मूलतः लौकिक हैं और जिनकी भाववस्तु और कथानक भी व्यापक रूप से सामाजिक राजनैतिक है। तमाशा, भवई, माच, ख्याल, सांग, स्वांग, नौटंकी, भाड़पत्र, करियाला जैसे नाट्य इस दौर की देर है। इनमें एक ऊर्द सत्यहरिश्चंद्र, नलदमयंती, प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु तथा रामायण महाभारत के कुछ प्रसंग दिखाए जाते रहे। इसके अलावा ऐतिहासिक या सामाजिक प्रसंगों, लोक कथाओं, प्रेमाख्यानों के साथ साथ 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते राजनीतिक कथानक भी खेले जाने लगे। तमाशा में मिठारानी पुट्ठे बापूराव, भवई में जसमा ओडन और झेंडा झूलन, माच में राजा भरथरी, देवर फौजाई, ख्याल में ढोला मारू श्री फरहाद, नौटंकी सांग में अमर सिंह राठौर, स्याहपोष सुल्ताना डाकू, सांग में शाही लकड़हारा कंवर निहाल दे, करियाला में साधु का स्वांग, पिलपिली साहब का स्वांग, साहूकार का स्वांग आदि कथानकों की विविधता का आभास मिल सकता है। मगर प्रारंभिक नाट्यों के इस दौर में कथानकों के चुनाव से भी अधिक महत्वपूर्ण उनका निर्वाण या उनमें रेखांकित होने वाली भाववस्तु का स्वरूप। मोटे तौर पर उसके दो स्तर देखे जा सकते हैं। रासलीला, अंकिया नाट या रामलीला जैसे मुख्यतः भक्तिमूलक नाट्यों में भावातिरेक और तल्लीनता की प्रधानता है और अधिकांशतः उनमें प्रयोग किया जाने वाला काव्य भी अधिक सूक्ष्म, सघन और मर्मस्पर्शी है। किसी हद तक एक रस्ता इन नाटकों में आवश्यक है, पर वे सतही या बनावटी नहीं है। उनका उद्देश्य भी अत्यंत उत्कट और अनन्य भक्तिभाव जागृत और पुष्ट करना है। किंतु इनके अलावा बाकी सभी नाट्यों में दो या तीन प्रमुख भाव और स्थितियों पर बल है। श्रृंगार या प्रेम, वीरता और युद्ध तथा हास्य, करुण का समावेश प्रेम या युद्ध के संदर्भ में आवश्यक बहुत जगह है, पर वह अतिरंजित भावप्रवणता या भावुकता पर का रूप ले लेता है। यह स्थिति लगभग सभी कथानकों और प्रसंगों में दिखाई पड़ती है, चाहे वे पौराणिक हो, ऐतिहासिक हो, लोक कथाओं या आख्यानों से आए हों, चाहे सामाजिक अथवा राजनैतिक हो। संवेदना की स्थूलता के कारण इन नाट्यों के प्रदर्शन आम दर्शकों का मनोरंजन तो करते हैं और किसी हद तक एक प्रकार की आदर्शवादिता का या भारतीय समाज के परंपरा सम्मत मूल्यों का संप्रेषण भी करते हैं, पर उनका जैसा गहरा आवेग मूलक अथवा संवेदनशील प्रभाव नहीं पड़ता जैसा उत्कृष्ट कलात्मक अनुभव से अपेक्षित है। निसंदेह उनके पीछे सौंदर्य दृष्टि संस्कृत नाटकों की भांति रसमूलक ही है। उसी तरह इन नाट्यों में भी वैयक्तिक संघर्ष नहीं बल्कि व्यक्ति और समूह के अंतः संबंध की पहचान और जीवन की अनेक अवस्थाओं से गुजर कर एक तरह से सम या संतुलन की अवस्था में दर्शक को ले जाने की प्रवृत्ति मौजूद है। पर इन अवस्थाओं और उनमें होने वाले पात्रों का चित्रण कमोबेश सतही और स्थूल ही है। इसका बहुत कुछ कारण तो यही है कि ये नाट्यलेख विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अवयवों के प्रयोग के उद्देश्य से किए गए संग्रह मात्र हैं या प्रयोग की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर रचे गए हैं। उनके पीछे कोई स्वतंत्र सृजनात्मक प्रेरणा या ऊर्जा नहीं है। इसके बिना किसी भी नाटक को बल्कि किसी भी रचना को गहरी और स्थायी सार्थकता नहीं मिल पाती। हिंदी भाषा क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में लिखे गए पारसी शैली के नाटक में से ठीक इसी कारण मंच पर भारी सफलता के बावजूद नाटक साहित्य के रूप में विचारणीय नहीं होते। यह बात उन अधिकांश नाटकों के बारे में भी सही है जो देश की लगभग सभी भाषाओं में पिछले 100-125 वर्ष में पश्चिमी रंगमंच की प्रेरणा से लिखे गए। उनमें अभिनय करके कई अभिनेता तो विख्यात और अविस्मरणीय हो गए, पर उन नाटकों को आज कोई नहीं पढ़ता। आधुनिक युग के नाटकों और रंगमंच के इन पक्षों की कुछ चर्चा बाद में की जाएगी। यहाँ इस तथ्य का उल्लेख यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि मध्यकालीन नाट्य लेखकों के आलेखों उनकी प्रभावशाली और आकर्षक प्रस्तुतियों के बावजूद अपने आप में सृजनात्मक उत्कृष्टता की दृष्टि से उल्लेखनीय नहीं है। पारंपरिक नाट्य प्रदर्शनों के संबंध में यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है। यद्यपि इसके परोक्ष रूप से संकेत पहले किया जा चुका है, इन नाट्यलेखों में कथा का प्रसंग का ढांचा मात्र होता है जिसके आधार पर प्रदर्शन में अभिनेता अपनी उपज से अपनी आंश रचना की क्षमता से संवाद गढ़कर बोलता है, कथा सूत्र को आगे बढ़ाता है या कार्य व्यापार पर टिप्पणी करता है। एक तरह से इस ढांचे में भावना के रक्तमांस का समावेश अभिनेता ही करता है। वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा उसी के द्वारा की जाती है। नाटककार की अनुपस्थिति के कारण भी पारंपरिक रंगकार संस्कृत रंगकार से भी अधिक पूरी तरह अभिनेता का रंगकर्म है। पारंपरिक नाटकों या नाट्य लेखों की संरचना की एक दो अन्य विशेषता भी ध्यान देने योग्य है। अनेक नाट्यों में प्रारंभिक मंगलाचरण के बाद प्रस्तुति के दो खंड होते हैं, पाला कुछ प्रस्तावना जैसा, जिसमें अक्सर गीत संगीत और नृत्य की प्रधानता रहती है। उदाहरण के लिए रासलीला में नित्यरास, तमाशा में गण और गौलन, यक्षगान में उड्डा लगा, करियाला में साधु का स्वांग, भवई में ब्राह्मण का वेश इत्यादि। दूसरा खंड मुख्य प्रसंग या प्रसंगों का है। दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश नाट्यों में एक प्रदर्शन में केवल एक नहीं अनेक छोटे छोटे कथानक दिखाए जाते हैं जिनके अलग अलग नाट्यों में अलग अलग नाम है। जैसे भवई में यह छोटे छोटे प्रसंग वेश कहलाते हैं, तमाशा में वग, रासलीला में लीलाएं, यक्षगान में प्रसंग, करियाला में स्वांग आदि। मुख्य बात यह है कि प्रदर्शन केवल एक कथानक तक सीमित नहीं रहता, अलग अलग भावों और स्थितियों के कई कथानक दिखाए जाते हैं। एक ही प्रदर्शन में एक से अधिक कथानकों के प्रस्तुतिकरण का एक कारण तो यही हो सकता है कि किसी सुनियोजित संरचना के अभाव में केवल अभिनेता की उपज या आश रचना के सहारे एक प्रसंग को बहुत देर तक दिखाते रहना आसान नहीं है। दर्शकों को लगभग रात भर बांधे रहने के लिए स्थितियों और चरित्रों की विविधता बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में इस बात पर भी ध्यान दिया जा सकता है कि यात्रा या नौटंकी जैसे नाट्य में जहाँ नाट्यलयों की संरचना अधिक सुनियोजित और कथानकों में ज़्यादा फैलाव है, वहाँ एक ही कथानक सारी रात प्रदर्शन के शुरू से अंत तक चलता रहता है। दरअसल पारंपरिक रंगकर्म इतना अधिक प्रयोग या प्रदर्शन केंद्रीय है कि नाट्यलेख या नाटक की अलग से चर्चा ही बहुत बार अधूरी या निरर्थक जान पड़ती है। इस तरह से पारंपरिक रंगकर्म में नाटक की पदच्युति का कुछ अनुमान इस बात से भी हो सकता है। इसलिए पारंपरिक नाट्यों की वास्तविक शक्ति, लोकप्रियता और इतने दीर्घकाल तक उनकी जीवंतता को पहचानने के लिए उनके प्रयोग और अभिनय की ही जांच पड़ताल करना उपयोगी होगा। इन नाट्य के प्रयोगों या प्रदर्शन में संस्कृत रंग प्रयोगों की रूढ़ियों, पद्धतियों और व्यवहारों की निरंतरता और अन्य परिवर्तन की प्रक्रिया का बड़ा प्रभावशाली रूप देखा जा सकता है। इससे भारतीय कलाओं में तमाम नियमबद्धता के बावजूद लचीलेपन और जरूरत के हिसाब से बदलते जाने और पुराने रूपों में नवीकरण की विस्मयकारी क्षमता का पता चलता है। उदाहरण के लिए पूर्व रंग को ही लें जिसका बड़ा विस्तृत और सूक्ष्म विधान नाट्यशास्त्र में मिलता है। पारंपरिक नाट्यों के लगभग सभी प्रादेशिक रूपों में कम या ज़्यादा पूर्व रंग का कोई न कोई अंग, चरण या उससे मिलती जुलती पद्धति मौजूद है। इसका सबसे विस्तृत और दीर्घ रूप कूडियाट्टम में दिख पड़ता है जहाँ पूर्व रंग की कई कई रातों तक चलता रहता है। असम के अंकिया नाट, मणिपुर के नट संकीर्तन और कर्नाटक के यक्षगान में भी पूर्व रंग से मिलती जुलती क्रियाओं का बड़ा विस्तार है। सामान्य रूप से सभी नाट्यों में मंगलाचरण अनिवार्य है, जिसमें गणेश या किसी अन्य देवी देवता की वंदना की जाती है। कई नाट्यों में जर्जर की स्थापना और मंच की पवित्रता की प्रतिष्ठा का कई रूप है, जैसे माच में भिस्ती और फर्राशन के आने का विधान है। कई में प्रारंभिक सामूहिक या एकल नृत्य होते हैं, साथ ही प्रदर्शन प्रारंभ होने के पहले देर तक विभिन्न वाद्यों विशेषकर नगाड़ा, मृदंग, मद्दल, ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों को बजाने का चलन सभी नाट्यों में पाया जाता है। इस प्रकार मुख्य प्रदर्शन शुरू होने से पहले प्रदर्शन की सफलता की कामना के लिए किसी न किसी रूप में देवता की स्तुति, मंच की शुद्धि या उसके विशेष स्थिति की स्थापना और अभिनेता तथा दर्शक के मन को पूरी तरह अभिनय प्रदर्शन के तैयार करने के प्रोग्राम में मिलती जुलती प्रक्रियाएं पारंपरिक रंग प्रयोगों में अनिवार्य रूप से होती हैं। संस्कृत रंगकर्म की एक अन्य महत्वपूर्ण रूढ़ी कक्षा विभाग का पालन भी बड़े लचीले ढंग से सभी पारंपरिक नाट्यों में होता है। इनमें स्थान परिवर्तन ज्यादातर अभिनेताओं द्वारा मंच पर परिक्रमण द्वारा ही सूचित होता है, यद्यपि इसे मंच का विभाजन क्रम सदा वैसा ही नहीं रखा जाता जैसा नाट्यशास्त्र में बताया गया है। साथ ही कई बार अभिनेता स्वयं स्थान बदलने की सूचना सीधे सीधे किसी संवाद से जोड़कर देते हैं। इसी तरह काल परिवर्तन भी या तो गीत नृत्य द्वारा सूचित किया जाता है या अभिनेता की घोषणा द्वारा। देश और काल के इस कल्पनाशील संयोजन में देश काल की अनुमिति का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसमें धरती, आकाश, पाताल तथा भूत, भविष्यत, वर्तमान सब सहज या न्यास से मटाते हैं। इन नाटकों की यह बड़ी भारी शक्ति है। किंतु इन नए प्रादेशिक नाट्यों की सबसे प्रमुख विशेषता जो उन्हें संस्कृत रंगकर्म से अलग करती है वह है उनमें संगीत और नृत्य की प्रधानता और उनका बहुमुखी उपयोग। संगीत और नृत्य का समावेश संस्कृत रंगमंच में भी था, पर वह अधिकांशतः पूर्व रंग तक सीमित था और नाटक के बीच में केवल आवश्यकता के अनुसार ही निर्धारित और नियंत्रित रूप में व्यवहार में आता था। संस्कृत नाटक में केंद्रीय महत्व गद्य या पद्य संवादों का या विशेष प्रकार से पाठ्य या गेय श्लोकों का है, जबकि परवर्ती मध्यकालीन नाट्यों में या तो गद्य संवाद ही नहीं है या उनका स्थान गौण है। मुख्य कथानक का संप्रेषण गीतों या कथा गायन के माध्यम से या अभिनय अथवा अभिनय मूलक नृत्यों द्वारा होता है। वास्तव में इन नाट्यों का तो कलेवर ही संगीत और नृत्य का है और वे ही उनकी संप्रेषणीयता के और लोकप्रियता के आधार हैं और उन्हें एक विशिष्ट रंग शैली या रंग संस्कृति का दर्जा देते हैं। यह मानने के पर्याप्त कारण है कि 10वीं से 14वीं 15वीं शताब्दियों के बीच जो रंग पद्धतियां विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं में विकसित हुई वे उन प्रदेशों में पहले से किसी न किसी रूप में मौजूद संगीत नृत्य प्रधान नाट्यों या उपरूपों पर ही आधारित थी। स्वयं संस्कृत रंगकर्म के अंतिम दौर में संगीतकों का उल्लेख मिलता है। दरअसल भभूति या हर्ष के काल तक आते आते संस्कृत भाषा जनसाधारण से बहुत दूर हो गई थी और संस्कृत नाटकों की विषय वस्तु भी सामान्य दर्शकों के लिए उतनी आकर्षक नहीं रही थी। उनमें विविधता की कमी है। प्रारंभिक दौर की सृजनात्मक ऊर्जा नैतिक पड़ती है और रचनात्मक स्तर से गिरावट और पुनरावृत्ति का भी आभास होता है। ऐसी स्थिति में नाटकों में दर्शकों की रुचि बनाए रखने के लिए संगीत और नृत्य का अधिकाधिक प्रयोग शुरू हुआ होगा, जिसने धीरे धीरे प्रमुखता प्राप्त कर ली होगी। इसलिए जब संस्कृत के बजाय प्रादेशिक भाषाओं में रंगकार शुरू हुआ तो वहाँ भी सामान्य दर्शक समुदाय को रंगकार की ओर आकर्षित करने के लिए स्थानीय नृत्य गीत प्रधान नाट्यों को भी प्राथमिकता और प्रमुखता मिली। मगर इन नाट्यों में संगीत और नृत्य का समावेश कई उद्देश्यों से और कई प्रकार से होता है और उनकी स्थिति भी विभिन्न नाट्यों में अलग अलग है। सभी पारंपरिक नाट्यों में कार्य व्यापार का विस्तार और पात्रों के बीच कथोपकथन बोलचाल की भाषा के गद्य रूप की बजाय अधिकांशतः गायन द्वारा ही होता है। इस प्रकार गायन की इन नाट्यों में कथासूत्र के संप्रेषण का कार्य व्यापार पर टिप्पणी का प्रमुख साधन है। इस रूप में वह वाचिक अभिनय की एक पद्धति का विशेष विस्तार है। संस्कृत रंग प्रयोग में गद्य संवादों के साथ श्लोकों के संगीतात्मक पाठ या कहीं कहीं गायन का प्रावधान है, किंतु प्रमुखता गद्य संवादों और श्लोकों के नाटकीय पाठ की ही है। पारंपरिक नाट्यों में स्थिति एकदम उल्टी है और वहाँ गद्य संवाद गौण केवल सूचनात्मक और अक्सर अभिनेता द्वारा आशुरचित होते हैं। वे वाक्पटुता, हास्यपरिहास और विनोद तथा हास्य की सृष्टि में तो सहायक होते हैं, पर प्रदर्शन का मुख्य अंश गेय ही रहता है। यह गायन कभी स्वयं पात्र द्वारा अकेले या सामूहिक रूप में, कभी केवल सूत्रधार द्वारा अकेले अपने सहयोगों के साथ, कभी सूत्रधार और पात्रों द्वारा मिलकर अनेक प्रकार से किया जाता है। यही स्थिति कमोवेश वाद्य संगीत की है। प्रदर्शन की योजना में उसका निश्चित नाट्य स्थान होता है। प्रदर्शन के आरंभ में अनुकूल वातावरण बनाने के अलावा वाद्य संगीत अनेक नाटकीय स्थितियों को रेखांकित करता है, सघन करता है या भाव दशा को स्पष्ट या तीव्र करने में सहायक है। स्वांग नौटंकी में नक्कारे, भवई में बोंगल, तमाशा में ढोलक या यक्षगान में बद्दल का आसान आत्यंतिक अनिवार्य और नाटकीय प्रभाव के सृष्टि में अनन्य है। साथ ही पारंपरिक नाट्य में संगीत एवं स्वतंत्र आकर्षक तत्व के रूप में भी रहता ही है। साधारण ही नहीं, विदग्ध दर्शकों के लिए भी संगीत के कारण एक परिचित तथा बहुत बार देखा गया प्रसंग भी रुचिकर और आनंददायक बन जाता है। हर प्रदेश के पारंपरिक नाट्यों के प्रदर्शन में लोक संगीत की बड़ी लुभावनी मनोहारी धनें गुथी होती हैं, जो प्रदर्शन के समग्र प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती हैं। इनके प्रयोग में भी सूत्रधार या गायक अभिनेता की अपनी जानकारी और सूझबूझ काम देती है और ये दुने किसी प्रसंग के हर प्रदर्शन में वही रहें या जरूरी नहीं है। विभिन्न प्रदर्शनों में सुविधानुसार अलग अलग धुनों का समावेश भी किया जाता है। इसी तरह एक ही कथानक के लिए विभिन्न मंडलियां अक्सर अलग अलग धुनें चुनती हैं, जिसके कारण एक ही प्रसंग के अलग अलग मंडलियों की प्रस्तुतियां अपना अलग मौलिक आस्वाद देती हैं। इसके अलावा पारंपरिक नाट्यों में शास्त्रीय और लोक संगीत दोनों का सहज समावेश और सम्मिश्रण रहता है और जहाँ गार्गी मार्गी और देशी का जैसा समन्वय नाटक और प्रयोग के अन्य पक्षों में है, वैसा भी संगीत में भी। इस संदर्भ में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि पारंपरिक रंगमंच ने जनसाधारण में संगीत के लिए देशव्यापी रुचि और ललक पैदा करने में और उसके व्यापक प्रचार में बड़ा योग दिया है। उसके कारण प्रत्येक क्षेत्र का दर्शक समुदाय लोक संगीत के साथ अनेक शास्त्रीय रागों से भी सहज परिचित रहा, भले वह उनके नाम न जानता हो। 1000 वर्ष लगातार साक्षात्कार के कारण संगीत उसके प्रदर्शन मूलक संस्कार रुचि और सौंदर्य बोध का ऐसा अनिवार्य अंग बन गया है कि आज संगीत के बिना किसी भी लोकप्रिय प्रदर्शन की कल्पना भी मुश्किल हो जाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस युग के नवीनतम यंत्र आधारित प्रदर्शनकारी माध्यम फिल्मों भी हमारे देश में किस संगीत ने ऐसा अटल और अनिवार्य स्थान बना लिया है। मगर संगीत की स्थिति विभिन्न पारंपरिक नाटों में एक जैसी नहीं है। एक छोर पर उत्तर प्रदेश का संगीत नौटंकी और हरियाणा का सांग जैसे नाट्य हैं, जिन्हें शुद्ध संगीतक कहा जा सकता है, क्योंकि उनमें गद्य संवाद नहीं के बराबर हैं और सारा कथानक छंदबद्ध तो होता ही है, पात्रों के ज्ञान द्वारा ही संप्रेषित होता है। कमोबेश ऐसे ही नाट्यों में मणिपुरी के रासलीला, बिहार के विदेशी या कथा गायन प्रधान नाट्य, आंध्र प्रदेश के ब्रूर कथा और मध्य प्रदेश के पंडवानी को भी शामिल किया जा सकता है। दूसरी ओर यात्रा तथा किसी हद तक एक भिन्न रूप में अंकिया नाट्य, भाड पत्र और करियाला आदि हैं, जिनमें गद्य अंशों की प्रमुखता या बहुलता है। तमाशा, भवई, ख्याल, माच, तिरुकुतु जैसे नाट्यों में संगीत नौटंकी जितनी तो नहीं पर भिन्न भिन्न अनुपातों में कम ज़्यादा दिखाई पड़ता है। अनेक नाट्यों में पात्र के साथ साथ सूत्रधार या अन्य अभिनेता भी गाते हैं। कई नाट्यों में पात्र गीत या संवाद के गायन का आरंभ करता है, बाकी अंश गायक वृंद या अन्य अभिनेताओं द्वारा गाए जाते हैं। दक्षिण भारत के नाट्यों में जैसे यक्षगान, भागवत मेल, कुचिपुड़ी, वीथी नाटकम, तिरुकुतु आदि में अधिकतर गायन स्वयं पात्रों द्वारा नहीं भागवत या सूत्रधार द्वारा होता है। इस भिन्नता का कुछ संबंध इन पारंपरिक नाट्यों में नृत्य की स्थिति से है। दक्षिण के अधिकांश नाट्यों में नृत्य का अंश बहुत अधिक है, इसका स्रोत समझना कठिन नहीं है। स्वयं नाट्यशास्त्र में दक्षिणात्य प्रवृत्ति के अंतर्गत कौशिकी वृत्ति की यानी नृत्य गीत की प्रमुखता का उल्लेख है। तमाशा, भवई, अंकिया नाट में नृत्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पर वह गीतों या गेय अथवा गद्य संवादों के बीच बीच में आता है। बहुत कुछ इसी प्रकार वह सांग, ख्याल या नाच माच में भी है। यात्रा में वह प्रदर्शन के प्रारंभ में होने वाले सामूहिक नृत्य के रूप में भी अधिक रहा है। संगीत नौटंकी में उसका स्थान नहीं के बराबर है या राजदरबार के दृश्यों में एक तरह की राशिद रूढ़ी के रूप में नर्तकी का नृत्य दिखाई पड़ता है। संगीत जैसे वाचिक अभिनय का विस्तार है, उसी तरह नृत्य भी आंगिक अभिनय का विस्तार है, जो पूरी प्रदर्शन में कई कार्य संपन्न करता है। पूर्व रंग में नृत्य लगभग अनुष्ठानिक रूप में होने के अलावा कहीं वह गीत में, संवादों में सूत्रधार की टिप्पणी में अभिव्यक्त भाव को सघन करता है, कहीं पात्रों की मनदशा को प्रकट करता है, कहीं वह काल का संचरण सूचित करता है और कहीं केवल मनोरंजन का माध्यम है। पारंपरिक नाट्यों में नृत्य के स्रोत भी संगीत की तरह ही मार्गी और देशी दोनों ही हैं। इसमें शास्त्रीय नृत्यों की छटाएं और तत्व हैं, साथ ही लोक नृत्य की यथावत अथवा मंच या नाट्य की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित रूप में समाविष्ट हैं। अनेक नाट्यों में नृत्यों के भंगिमाएं, पदविन्यास, चारियां, करण, अंगहार आदि युद्ध मूलक नृत्यों और गतियों में से या अनुष्ठान मूलक क्रियाओं से आए हैं। इस तरह संगीत ने पारंपरिक नाट्यों में संवादों को एक तरह की प्रतीकात्मकता और लयबद्धता दी है, उसी तरह किंतु उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप में नृत्य के पारंपरिक नाट्यों में गतियों को लयबद्धता दी है। कई प्रकार से नाट्यों में लयबद्ध गतियाँ उनका मुख्य आकर्षक भी हैं और उनके अभिनय में नाट्यधर्मिता का आधार भी। यह बात ध्यान देने योग्य है कि पारंपरिक रंगकर्म में नाट्यधर्मी और लोकधर्मी का यह भेद किसी हद तक समाप्त हो गया है, या इसी बात को यूँ भी कहा जा सकता है कि उनमें नाट्यधर्मी और लोकधर्मी का ऐसा मिश्रण है कि दोनों को अलग अलग पहचान सकना मुश्किल हो जाता है। दरअसल नाट्यशास्त्र का लोकधर्मी शब्द यथार्थवादी का यथार्थवाची नहीं है। लोकधर्मी में शैलीबद्धता का एक विशेष प्रकार है जिसमें नाट्यधर्मी जैसे पूर्व निश्चित अटल नियमबद्धता नहीं है, बल्कि अभिनय प्रदर्शन की आवश्यकता के अनुसार दैनंदिनी जीवन में दिखाई पड़ने वाली गति, भंगिमा, मुद्रा या वाचिक ध्वनियों पद्धतियों का प्रयोग भी होता है। पारंपरिक नाट्यों का एक अन्य रोचक पक्ष है उसमें दो पात्रों की विशेष स्थिति, एक है सूत्रधार और दूसरा विदूषक। यद्यपि विभिन्न नाट्य प्रकारों में इनके नाम अलग अलग हैं, जैसे सूत्रधार को ही अधिकतर दक्षिण भारतीय नाट्यों में भागवत, भवई में नायक, नौटंकी में रंगा, रासलीला में स्वामी और अंकिया नाट में सूत्रधार कहते हैं। इसी तरह विदूषक को तमाशा में सुगाड्या, भाड़ पत्र में मस्खरा, यक्षगान में हनुमान नायक या हास्यगार, भवई में रंगला, रामलीला में मनसुखा कहते हैं और कई नाट्यों में वह विदूषक भी कहलाता है। कई नाट्यों में कोई अन्य पात्र भी अंशतः सूत्रधार या विदूषक का काम करता है, किंतु नाम आदि से भी ज़्यादा बुनियादी तत्व इन पात्रों की विशिष्ट भूमिका का है। सूत्रधार को ही ले, पूर्व लिखित नाटकों के अभाव में या अनेक अलिखात्मक स्वरूप के कारण यह जरूरी हो गया कि कोई व्यक्ति प्रयोग के लिए कथानक चुने। आवश्यक क्या संगीत, नृत्य आदि अन्य तत्व निर्धारित और संयोजित करे जो सब अभिनेताओं को सिखाए और फिर मंच पर इनको संचालित नियंत्रित करे। पारंपरिक नाट्यों का सूत्रधार ये सभी काम करता है। अनेक नाट्यों में लेख का रचयिता भी स्वयं सूत्रधार होता है, वह मंच पर स्वयं गाता है और मजीर द्वारा अन्य प्रकार से संगीत और नृत्य का भी लय नियंत्रण करता है। वही सूच्य अंशों को पद्य या गद्य में दर्शकों को संप्रेषित करता है, कार्य व्यापार पर टिप्पणी करता है और आवश्यकता पड़ने पर छोटी छोटी भूमिकाएँ भी निभा देता है। जाहिर है कि यह सब कार्य करने के लिए प्रदर्शन के दौरान पूरे समय मंच पर उसकी उपस्थित रहना अनिवार्य है। इस प्रकार पारंपरिक नाट्यों के सूत्रधार में संस्कृत नाटक के सूत्रधार की नियंत्रणता होते हुए भी दोनों बुनियादी रूप से भिन्न है। संस्कृत नाटक का सूत्रधार प्रारंभ में नाटक और नाटककार के बारे में सूचना देकर या कभी कभी नाटक को शुरू करके चला जाता है, फिर मंच पर उसका आना आवश्यक न था, वह नेपथ्य से ही प्रदर्शन का संचालन करता है। किसी किसी नाटक में उसके कोई भूमिका ग्रहण करने का भी संकेत मिलता है, किंतु उन नाटकों में भी प्रमुखता नाटक के अनुपात्रों की ही है। पारंपरिक नाटकों के सूत्रधार की मंच पर उपस्थिति इतनी अधिक बहुमुखी और केंद्रीय है कि बहुत बार वही उससे प्रमुख पात्र या अभिनेता जान पड़ता है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि पारंपरिक नाट्य कर्म में सूत्रधार की अवधारणा और स्थिति का बहुत ही सार्थक नाटकीय विकास हुआ है। ऐसा ही कुछ रूपांतर संस्कृत नाटक के विदूषक का भी हुआ है। पारंपरिक नाट्यों में वह नायक का पेटू, अटपटी, रूपसज्जा या वेशभूषा वाला मित्र नहीं, अक्सर वह एक स्वतंत्र पात्र होता है। इसे कभी प्रकट होने, कुछ भी करने कहने की स्वतंत्रता है। वह पौराणिक या काल्पनिक परिवेश, अपरिचित देशकाल की कहानी के प्रसंगों और पात्रों को वर्तमान की स्थितियों और व्यक्तियों से जोड़ने का अनोखा काम करता है। उसे यह छूट है कि वह स्थानीय समकालीन घटनाओं, व्यक्तियों और उनके तौर तरीकों की विसंगति, अनुचित या न्याय पर अपनी सूझबूझ, वाक्पटुता, प्रयास और विनोद वृत्ति से टिप्पणी करे। विदूषक की इस अवधारणा असाधारण विशेषाधिकार महत्व का चरम और सबसे प्रखर रूप केरल के कुड़ियाट्टम में दिख पड़ता है। वहाँ वह संस्कृत नाटकों के नायकों के संवाद की मलयालम व्याख्या करता है जो प्रायः मूल संवादों से भी लंबी हो जाती है और बहुत बार घंटों या कई दिनों तक चलती रहती है। उसकी व्यंग्योक्तियों से शास्त्र, देवता, महाराज, महापुरुष, राजा या सामान्य व्यक्ति कोई नहीं बचता। दरअसल पौराणिक, अति परिचित, बार बार दोहराई जाने वाली वस्तु को भी समकालीन और दैनंदिनी जीवन के स्तर पर प्रासंगिक बनाने की यह कल्पनाशील आकर्षक पद्धति पारंपरिक नाट्य की संरचना में ही बुनी हुई है। पारंपरिक नाट्य में विदूषक या उसका समानाधर्मी पात्र विनोद और हास्य के इस प्रकार मनोरंजन का स्रोत तो है ही, पर उससे भी अधिक वह दर्शकों को अपनी चेतना को, उनकी भावनाओं को, जीवन की स्थितियों के बारे में उनकी प्रतिक्रियाओं को अभिव्यक्त करता है, उनका संवाहक है। वह एक तरह के दर्शकों का प्रतिनिधि उनकी ही आवाज़ है। पारंपरिक नाट्यकर्म की यह विशेष युक्ति उसके लचीलेपन का समकालीन सार्थकता की खोज का बड़ा ही रोचक प्रमाण है। पारंपरिक नाट्यों में अभिनय प्रदर्शन की अन्य अनेक खूबियों या विशेषताओं में से एक और भी जिक्र करने का योग है जो संस्कृत रंगमंच में नहीं है। पारंपरिक नाटकों में इक्का दुक्का अपवाद छोड़कर स्त्रियां अभिनय नहीं करती, पुरुष ही स्त्री पात्र की भूमिकाएं करते हैं। मुस्लिम शासन के दिनों की सामाजिक परिस्थितियों के कारण स्थितियों का नाटकों में भाग न लेना निस्संदेह इसका एक कारण माना जा सकता है, पर यह चलन दक्षिण भारत के नाट्यों में भी अनिवार्य रूप से मौजूद है, जहाँ मुस्लिम शासन का असर उतना व्यापक और गहरा न था और जहाँ मंदिरों में देशवा देवदासियों को नृत्य करने की परंपरा लगातार बनी रही। इसलिए स्थिति का वास्तविक कारण संभवतः पारंपरिक नाट्यों के प्रदर्शन की परिस्थितियों में ही है। संस्कृत नाटक अधिकतर राजमहलों या मंदिरों में संबद्ध रंगशालाओं में खेले जाते थे, जहाँ दर्शकों की संख्या सीमित होती थी। इससे भिन्न पारंपरिक नाटक प्रदर्शन खुले मैदान में आकाश के नीचे सैकड़ों हजार दर्शकों के सामने होते थे, जो रात रात भर चलते थे। उनमें गाने के लिए आवाज में जैसी बुलंदी और दम, नाचने के लिए जैसी शारीरिक शक्ति और दृढ़ता तथा सहनशीलता चाहिए, वह उस युग में स्त्री उचित नहीं लगी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। मुख्यमंत्री मंडलियों का कष्ट भरा जीवन इधर से उधर भटकते में तरह तरह के जोखिम की संभावना और राजनीतिक अस्थिरता के कारण सामान्य सुरक्षा की कठिनाइयों ने भी पारंपरिक नाट्य में स्त्रियों को भाग लेने से विरत किया हो सकता है। बहरहाल यह स्थिति 1000 वर्ष के दौर में लगातार रही आई। सिर्फ तमाशा में ही जो 18वीं शताब्दी में पेशवाई जमाने के महाराष्ट्र में आरंभ हुआ, पेशेवर नाचने गाने वालियों से ही काम भी लेती रही। देश के बाकी सभी नाट्य में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक स्त्रियां नाटक रूप में भाग नहीं लेती रही। अंततः स्त्री पात्रों का अभिनय कई नाटकों में पुरुष अभिनेताओं की असाधारण प्रतिमा की अलग पहचान बन गई। बवई में कुछ ही वर्ष पहले दिवंगत जयशंकर सुंदरी और कुचिपुड़ी में आज भी वेदांतम सत्यनारायण द्वारा स्त्री पात्रों का अभूतपूर्व अभिनय जिन लोगों ने देखा है वे उसे कभी नहीं भूल सकते। उनके लिए कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है कि उन भूमिकाओं को कभी कोई स्त्री कैसे निपुणता, कलात्मकता और सूक्ष्मता से निभा भी सकती है। यह पारंपरिक प्रदर्शनों के मंच के बारे में भी कुछ बातों पर ध्यान देना उपयोगी होगा। यह रंगकर्म संपूर्णतः मुक्ताकाशी है। इसके अपवाद दो ही है, केरल का कुडियाट्टम जो मंदिरों के प्रांगण में निर्मित एक विशेष रंगशाला कुतंपलम में खेला जाता है, और दूसरा अंकिया नाटिया भावना, जिसके लिए कपड़े, बांस और लकड़ी की एक अत्यंत सुंदर रंगशाला या भावना घर बनाया जाता है। बाकी किसी भी पारंपरिक नाट्य के लिए रंगशाला नहीं होती। वास्तव में पारंपरिक रंगकर्म की शुरुआत ही उसके राजदरबारों द्वारा संरक्षण की आर्थिक और उनकी रंगशालाओं की भौतिक सीमाओं से निकलने के साथ हुई। जो रंगकार संस्कृत नाटकों के युग में लोक जीवन से चलकर राजमहलों और उनसे संबंधित अभिजात समाज में पहुंचा और वहां पनपा था, वह मध्ययुग में फिर से लोक जीवन में लौट आया। उसके लिए अब न तो कोई बना हुआ मंच था, न प्रेक्षागृह। अब नाटक गांव कस्बों खुली चौपालों पर, मंदिरों के बाहर मैदानों में या सड़कों पर ही खेला जा सकता था और वहीं खेला गया। प्रदर्शन के लिए जहां संभव हुआ अस्थायी या स्थायी चबूतरे बनाए गए, और अगर वह भी संभव नहीं हुआ तो धरती पर वृत्ताकार चौकोर या आयताकार भूमि अभिनय के लिए साफ कर ली गई। खुले आकाश के नीचे अधिकांश रात को मशालों की रोशनी में नाटक खेलने का काम चल पड़ा। हमारे सारे पारंपरिक नाट्यों के मंच का रूप थोड़े थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ ऐसा ही है। चकचकान में जमीन पर या चौकियों के चबूतरों पर चारों ओर कोनों पर केले के तने के खम्भे लगाकर मंच बना दिया जाता है। भवाई में धरती पर ही अभिनय स्थल बनाया जाता है, जिसे पौड़ कहते हैं। इसमें दर्शक तीन ओर बैठते हैं। मार्च में 8-10 फुट ऊंचा मचान बनाने की प्रथा है। आगरा क्षेत्र की भगत में शहरों में सड़क के ऊपर इतना ऊंचा मचान बनाया जाता है कि आने जाने वाले पैदल या किसी सवारी में उसके नीचे से निकल सके। इसमें कभी कभी कुछ विशेष नाटकीय स्थलों के लिए सड़क के दोनों ओर की इमारतों का भी इस्तेमाल कर लिया जाता था। तमाशा, यात्रा, नौटंकी, ख्याल, रामलीला आदि की काठ, मिट्टी या सीमेंट के चबूतरों पर ही खेले जाते हैं। इनमें से कुछ में चबूतरों के पीछे एक पिछवाई लगाई जाती है और दर्शक दो या तीन ओर बैठते हैं। कई में दर्शक चारों ओर होते हैं। उत्तर प्रदेश की रामलीला में कई जगहों में कथा के विभिन्न प्रसंग अलग अलग दिन अलग अलग स्थानों पर अभिनीत होते हैं। बनारस में रामनगर की और आगरा के रामलीलाओं में विभिन्न प्रसंगों के ये विभिन्न स्थल पूर्व निर्धारित है और दर्शक उन्हें देखने वहीं पहुंचते हैं। मंच की सरलता और खर्चीले साधनों पर निर्भरता से मुक्ति पारंपरिक रंग कार्य के विकास और इतने दिनों तक उसके जीवित रह पाने की अनिवार्य शर्त थी। पूरी तरह लोक जीवन से जुड़ा हुआ और उसी के सहयोग और संरक्षण पर आधारित रंग यह रंग कार्य और किसी परिस्थिति में चला ही नहीं सकता था। ऐसे रंग नाट्य प्रयोग में किसी तरह की दृश्य सज्जा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। केवल पट्टी और कुछ उपकरणों का उल्लेख किया जा सकता है जो अधिकांश नाटों में व्यवहार में आते हैं। पारंपरिक नाट्य का महत्वपूर्ण चाक्षुष तत्व है अभिनेता की वेशभूषा, रूप सज्जा या नाट्यों में मुखौटे। इसमें भी बड़ी विविधता और असमता है। यक्षगान, रासलीला या रामलीला के अलौकिक लगने वाले मुखौटों और वस्त्रों को लगाकर तमाशा में लगभग रोजमर्रा के वेशभूषा तक सुदृश्यता के अनेक रूप और स्तर मिलते हैं। कई नाटकों में विशेषकर ऐतिहासिक पात्रों के वस्त्रों में पात्रानुकूल युगीनता लाने की कोशिश भी होती है जो बहुत बार मंडली की लोकप्रियता और आर्थिक साधन संपन्नता पर निर्भर करती है, किंतु अधिकांशतः विशेषकर पौराणिक चरित्रों के वेशभूषा में किसी न किसी तरह की शैली बद्धति का भी सहारा लिया जाता है। अंत में सैकड़ों वर्षों से विविध रूपों और क्षेत्रों में चले आते इन नाट्यों की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता है अपने अपने क्षेत्र में इनकी अपार और निर्विवाद लोकप्रियता। ये नाट्य कई प्रकार से अपने अपने समुदायों से गहरे जुड़े रहते हैं। आज भी उनके प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग जमा होते हैं, तन्मय होकर देखते हैं, कहीं भूल होने पर और अच्छा लगने पर भी टीका टिप्पणी करते हैं। यही नहीं, एक ही प्रसंग की अलग अलग मंडलियों या अभिनेताओं द्वारा प्रस्तुतियों की सूक्ष्मता के साथ तुलना करते हैं। वास्तव में एक गहरे और सार्थक रूप में उनके दर्शक तो होते ही हैं, साथ ही प्रदर्शन में साझेदारी भी करते हैं। इस नाट्य परंपरा के सार्थक मूल्यांकन के लिए लोक जीवन में उसकी ऐसी गहरी जड़ों के सूत्रों को पहचानना बहुत जरूरी है। सच बात यह है कि एक और इन नाट्यों में शताब्दियों के व्यवहार और अनुभव से अर्जित शिल्पगत निपुणता और उसमें पैदा होने वाली चमक है, तो दूसरी ओर कई स्तरों पर जीवन से जुड़े होने के कारण प्राणवत्ता है। साथ ही भारतीय समाज की विशेष संरचना में जीवन के कुछ बुनियादी मूल्यों और मान्यताओं का संचरण भी नाट्यों द्वारा होता रहा है। बल्कि यह कहा जा सकता है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में एक ही प्रदेश के विभिन्न समुदायों को और एक ही स्थान के विभिन्न वर्गों या जाति समूहों को किसी हद तक संयुक्त रखने, जोड़ने और उनके बीच परस्पर संवाद बनाए रखने में भी इन नाट्यों का बड़ा योगदान है। इस दृष्टि से हमारा मध्यकालीन रंगकर्म संस्कृत नाटकों की तुलना में कहीं अधिक सार्थक और प्रासंगिक है। भले ही कलात्मक सूक्ष्मता और उत्कृष्टता उसमें उतनी न हो, पर किसी सृजनात्मक अभिव्यक्ति को केवल एक ही पैमाने पर नहीं आंका जा सकता। इन नाट्यों में जीवनी शक्ति और लोक संलग्नता के कारण मौलिकता और कल्पनाशीलता का जैसा समन्वय है, वह उन्हें श्रेष्ठ रंग संस्कृति का दर्जा देता है। वह भारतीय सृजनात्मक मेधा की अपूर्व क्षमता का भी प्रमाण है, जिसके बल पर संस्कृत रंगकर्म के विघटन के बाद एकदम बदली हुई परिस्थितियों में ऐसे ही समावेशी, व्यापक और जीवंत रंग संस्कृति की सृष्टि हुई जो सैकड़ों वर्ष तक अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सके। इस दृष्टि से इसे भारतीय रंगकला के ह्रास की बजाय एक विशेष प्रकार के विकास के रूप में देखना समझना अधिक संगत जान पड़ता है। इस रंग संस्कृति के महत्व को स्वीकार करने का उद्देश्य उसकी सीमाओं और उसमें निहित अंतर्विदों की अनदेखी करना नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच भारतीय रंगमंच के इस ढांचे में नए नाटक प्रकारों को उदय और उनसे बदली हुई सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के अभिव्यक्ति के बावजूद एक तरह का ठहराव आने लगा था। वास्तव में संस्कृत रंगकर्म के विघटन के बाद जो नई ऊर्जा प्रादेशिक भाषाओं के रंग कार्य में प्रवाहित हुई थी और जिसका अपूर्व प्रस्फुटन भक्त युग में हुआ, वह धीरे धीरे चूकती जा रही थी। नई राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के वातावरण में भक्ति भावना के प्रेरक शक्ति अब काम नहीं देती थी। अति परिचित पौराणिक कहानियों में निहित सामूहिक अनुभव अब भी दर्शकों को आकर्षित तो करता था, पर निरंतर पुनरावृत्ति के कारण उसकी पकड़ क्रमशः ढीली हो रही थी। लौकिक नाट्यों में अपेक्षाकृत बदले हुए कथानकों के कारण कुछ अधिक आकर्षण था, पर उनमें भी कुछ समय बाद यह एक तरह की पुनरावृत्ति होने लगी थी और उनमें पौराणिक कहानियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इनमें से कई नाट्यों में पूर्व लिखित निश्चित नाट्यालेख तो हैं, पर उनमें कोई मौलिक सृजनात्मक प्रतिभा नहीं है। वे उन नाट्यों की जरूरतों को अवश्य पूरा करते रहे, पर विचार, भाव या अनुभव के स्तर पर उनमें कोई नया आयाम पैदा नहीं हो सका। इसलिए पूरा रंगमंच एक ही जगह कवायद करने लगा, आगे नहीं बढ़ सका। पारंपरिक पद्धतियां किसी तरह चलती तो रही, पर उन्हें धीरे धीरे अधिकाधिक विपन्न और फीका होते जाने से बचाया नहीं जा सका। बहरहाल जिस समय रंगकर्म अपने उस अंतर्विरोध के कारण और राजनैतिक अस्थिरता के फलस्वरूप बाहरी संरक्षण तथा प्रोत्साहन में कमी के कारण ठहराव की स्थिति में था, तभी 19वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिम की एक नई और संभवतः अधिक प्रबल राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था और पूरी तरह भिन्न संस्कृति से हमारी मुठभेड़ हुई, जिसके नतीजे के रूप में धीरे धीरे देश पर अंग्रेजों का शासन हो गया। निसंदेह भारतीय जीवन और आचरण के लगभग सभी क्षेत्रों में पश्चिमी संस्कृति के वर्चस्व के अनेक दुर्गामी परिणाम हुए, मगर रंगकर्म के क्षेत्र में तो इसने एक सर्वथा अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया। देश के बड़े बड़े नगरों में जो नई जीवन पद्धति के मुख्य केंद्र बन रहे थे, एक ऐसी रंग शैली की नींव पड़ी जिसका देश की लंबी परंपराओं से या तो कोई संबंध ही न था या बहुत ही ढीला और व्यावसायिक तथा उपयोगितामूलक था। नई रंग शैली शासक वर्ग की रुचियों से जुड़ी होने के कारण और अपनी निजी विशिष्टता तथा शक्ति के कारण वे देश की मुख्य रंग शैली बन गई। साथ ही इसके फलस्वरूप पहली बार हमारे देहाती और शहरी रंगकर्म के बीच घातक अलगाव पैदा हुआ, जिसने धीरे धीरे हर स्तर पर हमारे रंग जीवन का नक्शा ही बदल दिया। शहरों में पश्चिमी नाटक और रंगमंच के अनुकरण में एक नए ढंग के नाटक लेखन और प्रदर्शन शैली की शुरुआत हुई, जो पिछले 2,500 वर्ष की भारतीय रंग परंपरा से बिल्कुल अलग थी। दूसरी ओर पारंपरिक ढंग का रंगकार पूरी तरह गांव में सिमट गया और वहीं किसी न किसी तरह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करने को बाध्य हुआ। यह स्थिति नए आधुनिक शहरी और पारंपरिक देहाती दोनों ही रंगकर्मों के लिए घातक सिद्ध हुई। जहां शहरी रंगकर्म का देश के दीर्घकालीन और जीवन से गहरी संपृक्त नाट्य परंपरा से संबंध टूट गया, वहीं देहातों में सीमित पारंपरिक रंगकर्म के लिए संरक्षण, विशेषकर समाज के प्रभावशाली समर्थ वर्गों का संरक्षण और भी सीमित हो गया। उसमें नई प्रतिभा के समावेश की, नई प्राण प्रतिष्ठा की संभावना भी कम हो गई, क्योंकि अब देश के प्रभावशाली वर्गों का सारा ध्यान समाज के लगभग सभी साधन नए शहरी रंगकर्म की उत्तेजक संभावनाओं पर केंद्रित हो गए थे। बेशक देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे पारंपरिक नाट्य आज भी जीवित हैं और कमोवेश लोकप्रिय हैं, पर आज वे जिस रूप में उपलब्ध हैं उनसे उनके वास्तविक और उत्कृष्ट रूप की केवल कल्पना ही की जा सकती है। आधुनिक युग में औद्योगिक समाज व्यवस्था के लगभग विस्तार के साथ उनके संरक्षण और जीवन का आधार सिकुड़ता जा रहा है। पिछले दशकों में संचार माध्यमों की चौमुखी हल्ले के सामने तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। आज ये सवाल भी बड़ी तीव्रता से बार बार उठते हैं कि क्या अब इनका कोई सार्थकता या प्रासंगिकता बची है, क्या अब ये बचे रह सकते हैं, क्या इन्हें बचाना संभव या आवश्यक भी है। अब आज के सामाजिक सांस्कृतिक विशेषकर रंगकर्म के संदर्भ में इन प्रश्नों का उत्तर खोजना जरूरी है, तभी जिस नए व्यापक और बुनियादी परिवर्तन के मोड़ पर हमारा रंगकर्म आज 1,000 वर्ष बाद फिर खड़ा है, उसको समझने या प्रभावित करने में हम सफल हो सकेंगे।